नंदगांव भगवान का साक्ष्य और वात्सल्य का केंद्र है, और शिवजी महाराज वहाँ पर तपस्या करके पर्वत बने हुए हैं, और उनके ऊपर भगवान कृष्ण बलराम सखाओं के साथ लीला करते हैं, माता पिता रहते हैं। देवमीड नाम का गोप था, एक एक क्षत्रिय था, गोप नहीं था। उसकी क्षत्रिय और वैश्य पत्नी थी दोनों, तो वैश्य पत्नी के द्वारा जन्म हुआ परजन्य, उर्जन्य और राजन्य, और दो कन्या नहीं, तीन पुत्र हुए, परजन्य, राजन्य, उर्जन्य। और जो क्षत्रिय पत्नी थी उसके द्वारा पुत्र हुआ शूरसेन, जिसके द्वारा वसुदेव का जन्म हुआ। आगे जाकर वसुदेव को कृष्ण और रोहिणी के द्वारा बलराम, और आगे जाकर सुभद्रा का प्राप्ति हुई। तो परजन्य को फिर पांच पुत्र हुए और दो कन्याएं हुई। परजन्य पहले गोकुल में रहते थे, तो गोकुल में वहां पर केशी ने बहुत आतंक मचा दिया था, तो फिर वो वहां से गए कामेवन में, कुछ दिन रहे, फिर खेलन वन में रहे, फिर बाद में नंदगांव में आए। नंदगांव में वो नारद मुनि उनको मिलने आए, उन्होंने उनको लक्ष्मी नारायण का मंत्र दिया। और तड़ाग वन में, अभी तो नहीं है वो वन, तड़ाग वन मतलब जगह तो है लेकिन वो लुप्त हो गई है। तड़ाग वन में परजन्य महाराज ने लक्ष्मी नारायण मंत्र का बहुत ही ध्यान पूर्वक जप किया। वहां पर एक शून्यहारी कुंड भी है, वहां पर उन्होंने अन्न और पेय त्याग करके तपस्या किया, और प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया आकाशवाणी के रूप में, और बताया तुम्हारे एकाग्र चिंतन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें पांच पुत्र और दो कन्याएं होंगी, और एक पुत्र जो मझला पुत्र होगा उसके उसके कोख में स्वयं भगवान अवतार लेंगे। तो कौन से पांच पुत्र हुए? अभिनंद, उपनंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। क्या बताया मैंने? अभिनंद, उपनंद, नंद, सुनंद और नंदन। नंदन चाचा कहते हैं उसको, बाकी दो ताऊ, दो ताऊ जी, उपनंद ताऊ जी और अभिनंद ताऊ जी, और सुनंद चाचा और नंदन चाचा, और दो सिस्टर्स। तो नंद बाबा को फिर कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई, और रोहिणी के पुत्र जो है वो बलराम की प्राप्ति भी उनको हुई। और ऐसे एक रघुपति उपाध्याय करके साउथ इंडियन आचार्य हैं, उन्होंने कहा दुनिया भर के लोग विष्णु को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, गोलोकनाथ को पूछते हैं, चतुर्भुज नारायण को पूछते हैं, मैं इन सबकी पूजा नहीं करता, मैं केवल नंद महाराज की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके आंगन में पर ब्रह्म जो है वो रेंग रहा है, पर ब्रह्म इज क्रॉलिंग एट हिज आंगन, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। इतना भाग्य है उनका, इतने वो महान है कि स्वयं पर ब्रह्म उनको आनंद देने के लिए एक बालक बनकर उनके आंगन में रेंग रहे हैं। इति दृक्स्व लीलाभिर् आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेक्षितादनेषु भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वंदे। ऐसे नंद महाराज और ब्रजवासियों को श्री कृष्ण भगवान ने आनंद के सागर में, आनंद कुंड में डुबो दिया, आनंद दिया उन्होंने। हाँ, ऐसा उनका जो नंद भवन का क्या भाग्य है कि जो भगवान हमेशा गौलोक में 16 साल के उम्र के रहते हैं, वो यहाँ पर बालक बनकर, इन्फेंट बनकर, नवजात शिशु बनकर रेंग रहे हैं। साक्षात शंकर भगवान ऋषि का रूप लेकर उनको दर्शन करने आते हैं। गौलोक तो परम धाम है, और गौलोक का एक हिस्सा 84 कोस का पृथ्वी पर भगवान ने प्रकट किया है, जिसको भौम वृंदावन कहते हैं। जो भूमि पर प्रकट है उसको कहते हैं भौम वृंदावन, और कुछ कुछ बातों में भौम वृंदावन गौलोक वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। कौन सी बातें हैं वो? एक बात तो वहां पर बाल रूप का दर्शन नहीं होता है गौलोक धाम में, यहां पर गोद खिलाना, स्तनपान कराना, डांटना, चलने को सिखाना, बोलने को सिखाना, जो सारे विश्व को गीता और शास्त्र सुनाते हैं उनको मैया तोतले तोतले बोल बोलने को सिखाती है। जो सारे दुनिया का संचालन करते हैं उसको हाथ पकड़कर चलना सिखाती है मैया, यहाँ पर वो सारा लीला का दर्शन गौलोक धाम में नहीं होता है। तो इसलिए बड़े बड़े देवता लोग आते हैं, जब जन्म हुआ था तो सभी लोग भेष बदल कर आए थे, कोई फूल बेचने वाली, कोई बर्तन बेचने वाली, कोई कंगन बेचने वाली, कोई कुछ कोई कुछ, कोई मड़ी मालिन, कोई बनी धाड़िन, हाँ सब बन के आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के बाल स्वरूप का। राधा रानी का भी करने के आते ही अलग से, और कृष्ण भगवान का भी आते करने से, एक ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये है कि वहां पर राक्षस नहीं होते हैं, इसलिए भगवान की वीर रस की पूर्ति नहीं होती है। भगवान के अंदर भी खुमखुमी है ना वीर, अरे कितना कितना लुटुपुटी की लड़ाई खेलेंगे, है ना, अभी ग्वाल बाल के साथ युद्ध खेल रहे हैं, हर युद्ध में, हर मल्ल युद्ध में ग्वाल बाल उनको परास्त कर देते हैं, मतलब भगवान परास्त हो जाते हैं ग्वाल बाल को खुश करने के लिए। राधा रानी भी लड़ती है तो भी हार जाते हैं वो, लेकिन अभी असली युद्ध करने का आनंद कहाँ मिलेगा, तो उनके ही कुछ गौलों के भक्त जो यहाँ पर राक्षस बन के आते हैं भगवान के इच्छा के अनुसार, और फिर यहाँ पर आकर उनके खूंखार युद्ध करते हैं, जो शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, जैसे भयंकर केशी, अघा, भगवान का रियल वीर रस की पूर्ति का आनंद देते हैं। तो ये जो रियल वीर रस की पूर्ति का आनंद जो है वो गौलोक वृंदावन में नहीं है, वो केवल भवम वृंदावन में है। ऐसे कुछ कुछ फर्क है उसके अंदर। नंदगांव का आनंद ऐसा है कि शिवजी आते हैं दर्शन करने के लिए, तो मैया बोलती है कभी घोड़ा बन के आते हो, कभी बैल बनकर आते हो, कभी लड़की बनकर आते हो, कभी गाड़ी बनकर आते हो, कभी कुछ बनकर आते हो, कभी हवा बनकर आते हो, कभी तूफान बनकर आते हो, अब साधु बनकर आए हो, चले जाओ यहां से, ठाड़ दरवाजा बंद कर देते हैं मुंह पे, क्योंकि वो आते हैं ना मोती वोती लेके आते हैं, धान्य लेके आते हैं, मतलब मैया हमको मोती नहीं चाहिए, हमको लाला के दर्शन चाहिए। अच्छा अभी समझ गई, हमको मोती नहीं चाहिए, धान्य नहीं चाहिए, लाला के दर्शन चाहिए, तुम सब लोग राक्षस के प्रतिनिधि हो। चले जाते हैं, फिर वन में जाकर शंकर भगवान रोते हैं, तो भगवान जानते हैं मेरा भक्त जो है बड़े दूर से आया है दर्शन करने के लिए, कुछ करना चाहिए। हाँ तो अपने अंदर का एक अस्त्र निकालते हैं, बहुत ठेवणीतला अस्त्र, व्हाट इज दैट, हाँ रड़ाइचं, रुदन रुदन बहुत जोर से रोने लगते हैं, पर मैया स्तनपान कराती है, फिर रोते हैं, फिर खिलौना देते हैं, फिर रोते हैं, मक्खन खिलाते हैं, फिर रोते हैं, अरे रोना बढ़ते जाता है, फिर क्या करे, मैया परेशान हो गई, क्या करे क्या करे। उसमें से पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी कौन है, वो बाबा की पत्नी है, वो जंगल में रो रहे ना उनकी पत्नी है वो, बोलते बाबा बड़े दूर से आए, बड़े तेजस्वी है, उसको आपने भगा दिया, उसी को बुला लो अभी, वो कुछ मंत्र मंत्र करेगा, बच्चा को शांत करेगा। तो फिर वो जो माँ ने, देखो माँ का भाव कैसा है, बालक की सुरक्षा के भय से जिसको भगा दिया था, बालक के आनंद के हेतु उसी उसी को, जिसको राक्षस मानती थी, उसको बुलावा भेज रही है। फिर शंकर जी भाग भाग के आते हैं, फिर रोता हुआ बालक जोर से रो रहा है, उसको रोते हुए आकर उसकी गोद में देते हैं, पहले चरण को स्पर्श करते ही बालक रोना बंद कर देता है। बाद में क्या बोलते हैं, मैया जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, अभी तुम यहीं रहो, कहीं जाओ मत, मैंने भगाया था आपको, माफ करना, अभी यहीं रहो, ब्रज का निवास करो, जब जब ये रोएगा तब मैं तुमको बुलाऊंगी। और एक वरदान दिया उनको, बोलते अब यहीं रहो और जो जो लाला को भोग लगाऊंगी सबसे पहले आपको खिलाऊंगी। तो वो नंदीश्वर के रूप में पहाड़ पर भी विराजमान है, आज भी वहां पर नंदलाला का जो भोग लगता है ना, सबसे पहले नंदीश्वर को उसका जल और उसका भोजन कराते हैं, उसके बाद जनता को प्राप्त होता है। कैसा भाग्य है देखो शंकर जी का, उन्होंने वहां पर हमको सिखाया सब लोगों को कैसे भगवान के लिए रोना है, हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड। ये भगवान भी अस्वस्थ हो गए उनका रोना सुनकर। उसका वन का नाम क्या है, आशेश्वर वन, और महादेव का नाम क्या है, आशेश्वर महादेव। आशा कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण शंकर भगवान ने वहां पर नंदगांव में दिखाया है। उधर एक कुंड भी है, आशेश्वर कुंड, उसके किनारे बैठकर उन्होंने भगवान का भजन किया था रोते हुए। एक पावन सरोवर है, वहां पर नंद बाबा को दर्शन हुए थे कि साक्षात प्रयाग, तो त्रिवेणी संगम, वहां पर आके स्नान कर रहे भक्ति के रूप में, सारी नदियां, गंगा नदी, जमुना सरस्वती, सब नदियां देवी के रूप में आके स्नान कर रही है, क्योंकि इनका त्रिवेणी जाने का प्लान था। तो कृष्ण ने बोला कि आज मत जाओ, कल जाओ, कल अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, कल जाना। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन पोस्टपोन करेंगे। तो उस दिन जब सुबह स्नान करने गए, ये बड़ा दर्शन हो गया उनको, सारे त्रिवेणी संगम, सारी नदियां जो है स्नान कर रही है। बोले क्यों स्नान कर रही है, बोलते साल भर हमारे अंदर सब लोग पापी लोग आके स्नान करते हैं, पाप जमा कर देते हैं, हम लोग अक्षय तृतीया को कैजुअल लीव लेते हैं और यहाँ पर आकर आपके कुंड में स्नान करते हैं, फिर पाप से मुक्त होकर पुनः तेज प्राप्त करके अपनी सेवा करने के लिए 359 दिन चले जाते हैं, क्योंकि सब जो है पहले काले काले नजर आ रहे थे और कुंड में स्नान करने के बाद सब लोग तेज पुंज नजर आ रहे थे। तो ये रहस्य समझा नहीं बाबा को। उन्होंने पूछा आप कौन हो महाराज? उन्होंने कहा इतना पाप जमा हो गया, सब काले हो गए, तो स्नान कर रहे हैं और किनारे में जो रेती है उसमें लोटपोट भी हो रहे हैं, फिर स्नान कर रहे हैं फिर लोटपोट हो रहे हैं। ऐसा तो कोई करता नहीं, हम लोग रोज स्नान करते हैं, पोंछ के चले जाते हैं नया कपड़ा पहन के। आप लोग स्नान भी कर रहे हैं और मट्टी में वापस घुल मिल रहे हैं, फिर स्नान कर रहे हैं फिर घुल मिल रहे हैं, ये क्या रहस्य है? बोलते ये रज जो है ना, ये रज का ऐसा महिमा है कि सारे वैकुंठों का दौलत इकट्ठा करने के बाद भी इसका एक कण कोई खरीद नहीं सकता है। इतना राधा कृष्ण के प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है इसके अंदर। ये जन्म जन्मांतर के महत पापों को नष्ट करने में सक्षम है। तो उस रज में हम लोटपोट हो रहे हैं, वो हमारे पवित्रता के कार्य का एक अंग है। और आपका जल, आपके नंद सरोवर का जल जो है वो इतना पावन है कि हर प्रकार के पापों से कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है। उस दिन से नाम पड़ गया पावन सरोवर। वो भगवान का गौचारण का तीन चार जगह है भगवान की ब्रज में, बहुत प्रिय जगह है। एक ग्वाल पुखरा है गोवर्धन में, दूसरा नंबर का जगह पावन सरोवर है। वहां पर भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में बहुत आनंद लेते हैं, कूदते हैं, अंडरग्राउंड स्विमिंग करते हैं, किसी का पैर पकड़ते हैं, किसी का पैर खींचते हैं, गायों को पानी पिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनके ऊपर बैठ कर फिर कूदते हैं जल में, स्विमिंग करते हैं, मिठाई खाते हैं, चोरी छुपे किसी का छुन के खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। भगवान की सखा लीला की बहुत प्रिय जगह है पावन सरोवर। उसी पर सनातन गोस्वामी ने भजन किया है बैठकर, भगवान ने दर्शन दिया है उनको वहां पर, सनातन गोस्वामी को। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने वहां भजन किया है। उसी के किनारे यशोदा मैया ने राजा रानी के लिए यशोदा कूप बनाया था, उसमें के पानी को लेकर राधा रानी हर रोज भगवान को भोजन बनाया करती थी। फिर धनिष्ठा बचा हुआ महाप्रसाद कृष्ण बलराम का लेकर आती थी और राधा रानी को ग्रहण कराती थी। और भगवान जानबूझकर जब बैठकर उनका बनाया हुआ प्रसाद खाते थे, तो जब जानते थे कि राधा रानी वहां देख रही है, जानबूझकर मुंह टेढ़ा करते थे, कितना बेकार खाना बनाया है ये बलवा, तू ही खा ले इसको, मैं तो नहीं खा सकता इसको, जानबूझकर राधा रानी को चढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे राधा रानी का नजर वहां आता था, बड़े मजे से खाते थे उसको। ये पावन सरोवर की लीला है। उसके आगे मोती कुंड है, वहां पर भगवान ने मोती बोकर मोतियों की खेती की थी। जब भगवान की राधा रानी की सगाई के रूप में यशोदा ने उनको हल्दी लगाई थी। फिर ऊपर नंद भवन में दर्शन है, कृष्ण भगवान बलराम जी माता पिता के साथ खड़े हैं, बाजू में धन सुखा मन सुखा भी खड़े हैं। वो क्या करते हैं, आप कहीं भी उनको घुमा लो मूर्ति को, वापस उनकी नज़र कबाड़ की ओर जाती है, क्योंकि कबाड़ में बंटा भोग रखा गया है। आप पुजारियों को पूछो, उन्होंने कई बार इन मूर्तियों को ऐसा घुमा दिया है, फिर भी उनकी नज़र जो है वो अलमारी की ओर ही जाती है। ने बड़े लड्डू जो है वो वहाँ पर रखे गए हैं। एनीवेज टाइम जरा खत्म हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नंदगांव में 56 कुंड हुआ करते थे, उसका एक नाम है, एक कुंड का नाम है छाछ कुंड। उसमें सब सखियां आकर छाछ भगवान को पिलाती थी। और कहा गया है कि नंद भवन के पहाड़ के ऊपर से जो छाछ प्रचुर मात्रा में होने के कारण गिरता था, वो बहकर वहां पर छाछ कुंड बना हुआ है। समझ सकते हैं कितनी समृद्धि थी वहां पर, हाउ मच वेल्थ इज टू बी देयर। हाँ, गिरा हुआ छाछ इकट्ठा होकर छाछ कुंड बना हुआ है। एक कृष्ण कुंड है, यशोदा कुंड है, आप लोग वहां जाने वाले हैं। यशोदा कुंड जो है वो यशोदा माता का निजी कुंड है, प्राइवेट कुंड है। वहां पर वो जब कृष्ण भगवान और बलराम जी छोटे से थे, तब उनको जाकर वहां स्नान कराती थी। नंद बाबा का एक कुंड है वहां पर है। लेकिन जैसे ही गोपाल चंपे में उसका वर्णन आता है, जैसे वो 5 साल के हो गए दोनों, तो मैया के हाथों स्नान कराने में शर्माने लगे। और मैया सखियों के साथ बात कर रही है, प्रभावती के साथ बात कर रही है, मैं देख रही हूं ये कुछ संकोच हो रहा है उनको आज वस्त्र उतारने में। तो वो कह रहे हैं हाँ बड़े हो गए अभी, उनको अपना कुंड बना दो, अभी तुम अपने साथ में मत बच्चा बनकर लेके जाओ उसको। तो कृष्ण कुंड बनाया गया, तो जहां पर कृष्ण भगवान बलराम जी अपने आप स्नान करा करते थे और स्नान करके फिर मैया को श्रृंगार करने के लिए मिलने आते थे। फिर एक नंद बैठक है वहां पर, जैसी कथा मैंने बताई ना आपको, नंद बैठक वहां पर हर रोज नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ बैठकर चर्चा करते थे, कृष्ण के कल्याण के लिए, कृष्ण के हित में, कृष्ण के लीलाओं के बारे में चिंतन करते थे, क्या करना है अभी अपने को उसके बारे में चर्चा करते थे। एक उस जगह का विशेष महत्व है कि जब वो ग्वाल बालों को लेकर गैया चरा कर लौट के आते थे तो दिन भर वो लोग पहाड़ पर देखते थे, बार बार यशोदा माई अप एंड डाउन खिड़की के पास जाके देखती थी, कितना सूरज नीचे आ रहा है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इतना स्लो क्यों नीचे आ रहा है, इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, मेरा कान्हा कब लौट के आएगा। तो जब सूरज नीचे आता था तो इनको ऊपर रहना मुमकिन नहीं होता था, तो सारे आरती के साथ पैराफेरनलिया गोपियों को लेकर सब मिठाई विठाई लेकर सब नीचे आते थे और नंद बैठक जो जमीन के लेवल पर है वहां बैठकर उनका इंतजार करते थे, ताकि बच्चे को ऊपर आने को टाइम लगेगा उतना देर हमको इंतजार करना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर वो नीचे आके बैठते थे और वहां पर कृष्ण बलराम भाग के उनके गोद में जाते थे और उनका स्वागत करते थे, उनको मिठाई खिलाते थे, बाबा के गोद में बैठते थे। यहाँ पर नंद कृष्ण भगवान, यहाँ पर बलराम भगवान, और दोनों बोल रहे हैं किसी का सुनना है किसका सुनना है समझ में नहीं आता था, दोनों बोल रहे हैं आज ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। नंद बैठक की वो लीला है, वहां पर यशोदा माई और नंद भगवान नंद महाराज कृष्ण बलराम का स्वागत किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में एक नरसिंह का मंदिर है, वहां पर कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए नंद बाबा यशोदा मैया नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। वो वाराह नरसिंह की मूर्ति है, दोनों साथ में है उसके अंदर, वो पहाड़ के उत्तरण पे है और नंद की गौशाला भी है जहाँ पर नंद भगवान की 9 लाख गायों की सेवा करते थे। तो आप सबको नंदगांव का भी दर्शन बधाई हो। वैसे कहते हैं नंद बाबा के गाँव में जो बालक है वो इतने नटखट होते हैं, अगर वो उन बालकों का आतंक स्वीकार करके अगर कोई भजन कर सकता है तो उसको सिद्ध महात्मा का पद भी मिलता है, तो कृष्ण भगवान भी ऐसे तंग किया करते साधुओं को। नंद के लाला की, बलराम भैया की, नंद बाबा की, यशोदा माई की, कोकिलावन बिहारी लाल की, श्री ब्रज किशोर जी महाराज की, श्री किशोरी वट की, किशोरी कुंड की, जावक धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। किशोरी कुंड के पास में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, जावक वट में चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर आके कीर्तन किया है, किशोरी कुंड में स्नान भी किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।